नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक बोट, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के ना रोंग बंदरगाह पहुंच गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में रक्षा सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार की समिति की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और समयबद्ध तरीके से अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने पर बल दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देश भर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने का अवसर देना है। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।